ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मनुष्य का जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए दिया गया है, बाकी किसी भी जीवन में हम भगवान के विषय में कोई संपर्क देखते नहीं। एक ही ऐसा मनुष्य का जीवन है, इतने सारे हजारों लाखों योनियों में केवल एक ही ऐसा जीवन है मनुष्य का जो जिसमें भगवान से जुड़ने की सुविधा उपलब्ध है, फैसिलिटी फॉर कनेक्टिंग विद गॉड। और जब तक मनुष्य भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं करता है तो माफी चाहता हूँ लेकिन बताना ज़रूरी है कि वो मनुष्य ही नहीं है। अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान के साथ संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, भगवान की सेवा में रहने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है तो वो द्विपद पशु का जीवन है। श्रीमद् भागवत में लिखा है वो मनुष्य का शरीर में है लेकिन दो पैरों का प्राणी है। आमतौर पर प्राणी चार पैर के होते हैं, ये दो पैर का है, बस इतना ही फर्क है। प्राणी और मनुष्य जीवन में फर्क क्या है? प्राणी जीवन में अपने आप में भगवान का संपर्क नहीं हो सकता है, किसी मनुष्य ने कराया तो होगा। मनुष्य ने अगर उनको माँ प्रसाद दिया, मनुष्य ने उनको अगर साथ में मंदिर के दरवाजे तक लेके गए या कीर्तन के मंडली में कुत्ता बैठ गया तो मनुष्य की कृपा से उसका हो सकता है, लेकिन अपने आप में नहीं हो सकता है। और अपने आप में हो सकता है मनुष्य जीवन में, इसलिए अपने आप में अगर अपने प्रयास नहीं किया तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ ये कहने के लिए, हम सब लोग जानवर हैं। इससे ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता है, बहुत दुर्लभ है। हम लोग इसमें भी जी रहे हैं इसलिए हम बोलते हैं हम जैसे बहुत लोग हैं, इधर बहुत सारे मनुष्य जीवन, हर देश में हर कंट्री में 650 बिलियन लोग हैं वर्ल्ड में, तो इतना दुर्लभ नहीं है ऐसा आपको लगेगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी जीवों के काउंट के साथ में तो हम लोग 0.0001% भी नहीं है इतने जीवों के सामने। जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे शरीर के नीचे शरीर के ऊपर ऐसे बिलियंस ऑफ जीव जो है वो दिखाई नहीं पड़ते, वो हैं। मैं सांस ले रहा हूँ कितने बिलियंस ऑफ जीव मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कितने अंदर रह रहे हैं, हाथों में कितने रह रहे हैं, नाक में कितने रह रहे हैं, मुँह में कितने रह रहे हैं, उनके सामने हमारा कोई नंबर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कोई परसेंटेज ही नहीं हमारा, लेकिन वो बहुत मूल्यवान जीवन है मनुष्य का। कितना नंबर संख्या बहुत कम है लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि गोल्ड शुद्ध जब होता है तो उसकी ज्वेलरी के दुकान में बहुत कम कस्टमर होते हैं लेकिन बहुत वैल्यूबल होते हैं। और बेंटेक्स वाले ज्वेलरी के दुकान में बहुत ज़्यादा गर्दी रहती है, भीड़ रहती है। वो भीड़ देखने से वो बड़ा नहीं होता है वो, और कम भीड़ होने से वैल्यू कम नहीं होती उसकी, क्योंकि शुद्ध है वो, तो बहुत लोग कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे उसको। ये तत्व है मनुष्य जीवन का। और सबसे दुर्दैव की बात यह है कि मनुष्य का जन्म लेने के बाद भी अगर हम मनुष्य जीवन को सीरियसली लेते नहीं हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिसके पास गोल्ड है लेकिन उसने कहीं कोने में रखा है उसको, तो फिर वो गोल्ड होने पर भी कोई वैल्यू नहीं उसकी। एक है मूल्यवान वस्तु प्राप्त होना और दूसरी बात है मूल्यवान वस्तु की वैल्यू समझना। आपके पास में बहुत मूल्यवान वस्तु होगी लेकिन आप जानते नहीं हैं, आप अज्ञान में हैं, तो मूल्यवान वस्तु का होना भी यूजलेस है। सबसे पहले मनुष्य जीवन का जो महत्व है उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, तो फिर मनुष्य जीवन जब है हमारे पास तो उसका पूरा लाभ मिलेगा आपको। अगर वो जानकारी नहीं है तो होकर भी कुछ फायदा नहीं है। एक ऐसा जीवन है जिसमें सर्वोच्च प्राप्ति जीव को हो सकती है, सर्वोच्च, कोई तुलना नहीं कर सकते हम, इतनी अमूल्य, इतनी सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वोत्तम लाभ इस जीवन में हो सकता है। वे हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं ना कि ऐसा सॉफ्टवेयर इस मशीन में लगा के रखा है कि डायरेक्ट भगवान को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। हमारे परम गुरु जी प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि ये ऐसा एक जीवन है इसमें साक्षात भगवान से संपर्क हो सकता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं, इनडायरेक्ट नहीं, लेकिन उसका प्रोसीजर है ना। अभी वो आप जानते हैं बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम क्या कहते हैं उसको, क्रूड, जमीन के अंदर होता है। तो बॉक्साइट से अगर एल्यूमिनियम पैदा करना है तो आपको बहुत प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, Al2O3 उसको आप प्रोसीजर करेंगे फिर एल्यूमिनियम निकलेगा, फिर उसके बाद उसके बर्तन बनेंगे, फिर उसका हवाई जहाज बनेगा। वैसे गोल्ड भी, आप गोल्ड के माइन में जाओगे ना तो आपका वो जो गोल्ड आपको मिलता है उधर जो भी आता है वो चेन बनाने के योग्य नहीं होता है, उसको बहुत प्रोसेस करना पड़ता है। उसके बाद में वो गोल्ड फिर 24 कैरेट 22 कैरेट ऐसा बहुत प्रकार का बनता है और फिर आपके गहने बनाने लायक होता है वो। तो हर चीज़ का प्रोसेस है, हर चीज़ का प्रोसेस है, प्रोसेस के बिना कोई चीज़ हम रियलाइज नहीं कर सकते। अब बिजली आपके घर में चल रही है, लाइट चल रही है, कितना प्रोसेसिंग है उसके अंदर, किधर पानी है, किधर नीचे गिर रहा है, उधर से क्या मशीन घूम रही है, वहाँ से उधर स्टोर हाउस में जा रहा है, उधर स्टोर हाउस में अंदर आपके कनेक्शन दिया है, यहाँ पर एक पोल है, वहाँ पर एक पोल है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर है, ऐसा सब करके फिर यहाँ पर आप जब बटन दबाएंगे तो आपको लाइट जलती हुई नज़र आएगी। और वो सारी प्रोसीजर नहीं होगी, आपने सारा फिटिंग यहाँ कर लिया है, सब बटन लगा दिए हैं लेकिन आपका प्रोसीजर नहीं हुआ है, तो आप कितने बटन ऑन करो कुछ नहीं होगा, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, बट कनेक्शन नहीं है। जैसे मेरा ये मोबाइल है, बहुत बढ़िया मोबाइल है ये, लेटेस्ट, लेकिन जब से शारजा में कदम रखा है ये चल नहीं रहा है। इतना बढ़िया इक्विपमेंट है ये, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। अभी एक दिन हो गया जब से आया तब से, अब तक वो चल रहा है कोशिश, जब तक नहीं कनेक्टिविटी है तब तक ये बढ़िया से बढ़िया भी होगा तो कुछ काम का नहीं है। मेरे को कोई टेंशन नहीं आज क्योंकि कोई फ़ोन नहीं आने वाला है, ऑन रखा है लेक्चर में भी क्योंकि कोई फ़ोन नहीं आने वाला है। आमतौर पर लेक्चर जब होता है तो पहले मैं उसको स्विच ऑफ करता हूँ। आज कोई टेंशन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तात्पर्य कहने का ये है कि कनेक्टिविटी नहीं होगी भगवान से बड़ा भी मनुष्य जीवन होगा तो भी यूजलेस है वो। आप प्रधानमंत्री के भी रिश्तेदार होंगे यार, वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी के भी आप रिश्तेदार होंगे, उसके बच्चे होंगे, अगर आपको पता नहीं है उसके बारे में तो हम लोग सड़क पर भीख मांगेंगे। ऐसे कितनी कहानियां हैं पुरानी, वो जानते नहीं है हमारे पिताजी कौन है, भटक रहे हैं स्टेशन पे, बूट पॉलिश कर रहे हैं, है ना, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है। जिस वक्त पता चलेगा, बूट पॉलिश करेगा क्या वो? नहीं करेगा, छोड़ देगा। करने की जरूरत क्या है? बैठ के खाएगा, क्योंकि अमीर आदमी का बेटा है वो। वैसे ही हमारी हालत हो गई है, हम सब लोग सबसे अमीर कौन है? उसके बेटे हैं, रिचेस्ट पर्सन सन। ये हमारी स्थिति है आज की, लेकिन जानते नहीं ना हम लोग, इसलिए भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानते नहीं हम किसके बेटे हैं। जिस समय पता चला ना, उस समय से ऐश्वर्य संपन्न जीवन आरंभ होता है, रिच लाइफ विल बिगिन। सबसे बड़ी रिचनेस जो है वो आपके चेहरे पे दिखाई देगी कि आप कितने रिच हो। बैंक बैलेंस देखने की जरूरत नहीं, ये जो ऐश्वर्य है ये किसी बैंक में जमा नहीं होता है, एक ही बैंक है इसके अंदर, उधर होता है, यहाँ होता है, तो उसका रिफ्लेक्शन चेहरे पे दिखता है कितना ऐश्वर्य है। और वो किस पे डिपेंड रहता है? कितना कनेक्शन हो गया है उस पे, वो आपको चेहरे पे रिफ्लेक्शन मिलेगा उसके। और यही जीवन है, इसके बिना क्या जीवन है? अरे कहीं भी रहो, गल्फ में रहो, अमेरिका रहो, इंग्लैंड रहो, यूरोप में रहो, रशिया में रहो, किधर भी रहो, बांग्लादेश में रहो, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो भी ऐश्वर्य है वो आप यहीं छोड़ के जाएंगे। कितना भी कमाएंगे तो भी यहीं पर छोड़ के जाएंगे, कितना भी ऐश्वर्य कमाएंगे, कितना भी नाम कमाएंगे, कितना भी यश कमाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन वो जो ऐश्वर्य है वो आप साथ लेके जाएंगे, इसको कहते हैं सद असद विवेक बुद्धि, सार असार बुद्धि। ये समझना कि क्या स्पिरिचुअल है और क्या मटेरियल है, क्या शाश्वत है और क्या अशाश्वत है, क्या चिरंतन है और क्या समाप्त होने वाला है, ये समझने की बुद्धि को कहते हैं सद असद विवेक बुद्धि। सद यानी परमानेंट, असद यानी नॉट परमानेंट, विवेक यानी वो, विवेक मतलब वो डिफरेंशिएटिंग इंटेलिजेंस जो फर्क कर सकता है उसको, इसलिए उसको विवेक बुद्धि कहते हैं। और सत्य और असत्य, चिरंतन और अशाश्वत वस्तु में जो फर्क करने की बुद्धि है उसको सद 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 असद विवेक बुद्धि कहते हैं। और वो केवल मनुष्य के शरीर में फिट की गई है, कुछ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो नहीं इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? सड़ जाता है, रस्टेड हो जाता है। अभी कोई भी आप इक्विपमेंट ले लो उसको यूज ही मत करो, एक साल के बाद खोलो वो चलेगा ही नहीं। अरे वो इक्विपमेंट वो ऐसा मशीन है, आपका हाथ तो जिंदा है ना, उसको ऐसे रखो, 6 महीने के बाद ऐसा करो, करो नहीं होगा ही नहीं वो 6 महीने ऐसा रखेंगे तो ये ऐसे होगा ही नहीं 6 महीने के बाद। क्यों? आपने इसमें जो एक्सटेंड करने की जो कैपेसिटी थी उसको आपने यूज ही नहीं किया तो वो गया, जो फैसिलिटी आपने यूज नहीं किया वो गया, वो निश्चित रूप से जाएगा। दिमाग यूज नहीं किया, वो भी हमारे ना कोंकणी में मस्त शब्द है, कुंभ, कुंभ मतलब यूजलेस मतलब डिफंक्ट कह सकते हैं उसको रस्टेड एंड डिफंक्ट, ऐसे दिमाग हो जाता है, कुछ भी यूज नहीं करेंगे तो वैसे ही हो जाता है। लंग्स यूज नहीं करेंगे तो भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको, फिर वो आगे लंग बंद हो जाएंगे सब नीचे वाले, इसलिए हम प्राणायाम करते। क्यों? बंद होने वाले लंग बंद ना हो जाए, चलते रहें, इसलिए हम लंबा सांस लेके उसको खोलते रहते बार बार कि भाई तू बंद मत हो जा, बंद होगा तो फिर आगे जाके यूज नहीं होगा, जब दौड़ूंगा तो भी खुलेगा ही नहीं, तो भाग नहीं सकूंगा आगे। तो ये कनेक्टिविटी जो है वो कैसे पैदा करना है? कोई भी जीव, मनुष्य जीव हमारे जैसा, अगर भगवान से कनेक्टेड नहीं है तो संत लोग कहते हैं जीवत शव समान, वो जिंदा होकर भी लाश है। थोड़ा मैं कठोर शब्द यूज कर रहा हूँ, डोंट माइंड इट, क्योंकि जैसे कैसा, जैसे धक्का देके हिलाएगा ना तो आदमी झकता नहीं है इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है। तो सब ही जिंदा लाशें हैं दुनिया में, वो लोग जो भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है। और हम लोगों को जिंदा लाश होकर घूमना नहीं है, हम लोगों को जिंदा जीवित भगवान की ओर जीवित होके ही जीना है। भले छोटी जिंदगी हो चलेगा, बट वी वॉन्ट टू लिव अ लाइव लाइफ। लाइफ तो लाइव ही होता है, लेकिन नहीं, यहां पर अभी बहुत सारे लाइफ ऐसे मुर्दा जैसे ही, हमको जिंदा होना है भगवान की तरफ से। जैसे ही हम जिंदा होते हैं भगवान की ओर, हमारे जीवन में अर्थ उत्पन्न होता है, लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल। तब तक बाकी सब समाप्त होने वाले जिंदगी में हम चल रहे हैं, है ना। जो नष्ट होने वाला है उसी रास्ते पे चल रहे हैं, जो जीवित होने वाला है उस रास्ते पे नहीं चल रहे। इसलिए सबसे पहले होता है संतों का संग। संत मतलब जो भगवान के विषय में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, वो संत कहते हैं। साधु यानी जो भगवान से जोड़ता है वो साधु है, और हमारा दुनिया से जो संपर्क है उसको काट डालता है वो साधु कहते हैं। साधु यानी हु कट्स, क्या कट करता है वो? हमारा जो दुनिया के साथ संबंध बना हुआ है। अरे दुनिया के संबंध में बुरा क्या है? नहीं, दुनिया के संबंध में जो भगवान से जुदा दुनिया है वो संबंध बहुत खराब है। अभी और एक दुनिया है जिसमें भगवान के साथ संबंध है, जैसे कि यहां पर है, तो उसमें तोड़ने की जरूरत नहीं है। तोड़ता क्या है वो? जो असत्य है उसको तोड़ता है, जो सत्य है उसको जोड़ देता है। और जो भगवान के प्रति 100% समर्पित है वो संत है। उनके संग में जब हम आते हैं तो हमारा कनेक्शन हो जाता है भगवान के साथ में, लिंक जुड़ जाता है, और हमारा जो मनुष्य जीवन है वो एक्टिवेट हो जाता है, चालू हो जाता है, शुरुआत होती है और चालू हो जाता है। तो संतों के संग में ऐसे क्या चीज़ है जो भगवान से आपको जोड़ देती है, बताइए। संतों के संग में हमको क्या प्राप्त होता है जिससे हम भगवान से जुड़ जाते हैं? आपको बोलना होगा, ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान जिससे आप भगवान से जुड़ जाते हो? आध्यात्मिक ज्ञान, वही तो है। आध्यात्मिक ज्ञान में कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको भगवान से जोड़ देती है? भगवान का नाम, ये कैसे आप भूलते हो? सत्संग सुन लिया अभी, अभी जोड़ना किससे है? भगवान के नाम से भगवान को जोड़ना है। तो संतों के संग में बहुत सारी बातें पता चलता है, और सार में क्या पता चलता है कि सबका सार है भगवान का नाम। जो मैं लूंगा तो मैं कनेक्ट हो जाऊंगा, एक्टिवेट हो जाऊंगा, और उसके बाद में जब हम उसको लेते हैं और जब हृदय शुद्ध होने लगता है तो कई सारी प्राकृतिक यानी नेचुरल हमारा जो स्वभाव है वो जागृत होने लगता है। हमारा स्वभाव क्या है? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान, ये हमारा नेचर है। क्या नेचर है? कि हम भगवान के अंश हैं। जब कोई कपड़ा गंदा होता है और उसको साबुन लगाते हैं तो क्या होता है? कपड़े का जो ओरिजिनल रंग है वो ऊपर आता है। जब कोई कोयला का कोयला की राख है उसको क्या कहते हैं आप लोग? निखारा कहते हैं। या उसको जब भी औरत वो नली से फूंक मारती है तो क्या होता है? क्या होता है उससे? आप बोलिए, क्या होता है? अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि अंदर है कि नहीं है? है, लेकिन वो राख से ढकी हुई है। तो जब हम लोग फूकर लगाते हैं उसके ऊपर तो क्या होता है? राख निकल जाती है और अंदर जो दबी हुई अग्नि है वो प्रकट हो जाती है। तो आप नया कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, अंदर का चीज उसको ही जगा रहे हैं, बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अंदर की जो चीज है आपकी उसी को आप जगा रहे हैं। तो भगवान के नाम से जप करने से क्या होता है? आपके अंदर जो भगवान के प्रति आकर्षण, स्वभाव, भक्ति, लगाव, जो भी कुछ है उसको आप जगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। नो जादू, कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं। जो आप लाए हो, जो आप हो, उसी को रियलाइज कर रहे हो। उसी को निर्माण मतलब प्रकट कर रहे हो, ऑलरेडी है वो अंदर, सबके अंदर है, लेकिन राख से ढकने से क्या होता है, उसका जो स्वरूप है वो उसका अनुभव नहीं कर सकते। अगर खाना बनाना है तो वो राख से ढके हुए कोयले पर खाना नहीं बना सकते आप। कोयला के ऊपर राख निकाल देंगे, जब अग्नि ऊपर आएगा तो आप अपना बर्तन रख के उसमें कुकिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी अवस्था है, हम सब लोग ऐसे ही अभी ढके हुए हैं। ढके किससे हैं? ये दुनियादारी का जो आकर्षण है, चकाचौंध, हमारे नजरें इधर उधर भाग रही हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये सुंदर है ये भोग चाहिए, ये वस्तु खाना है ये वस्तु लेना है, ये पैसा चाहिए, यहाँ से वहाँ करना है, भोग लेना है, इसकी राख सब लगी हुई है सब जगह पर। इसलिए वो जो अंदर की सुंदर ज्वाला है वो नजर नहीं आ रही किधर। जैसे ही उसको फुकर लगाएंगे, राख हट जाएगी, तो अंदर का स्वभाव जो है ना वो प्रकट हो जाएगा। और वो स्वभाव जब प्रकट होता है तो सबसे पहले क्या होता है? आनंद। सबसे पहले आनंद होता है, जिसकी हमें सबको खोज है, और हम सब लोग गलत दिशा में उसको खोज रहे हैं, और हमको नहीं मिल रहा है वो। हम धक्का खा रहे हैं बहुत और नहीं मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं नहीं मिल रहा है, कोशिश कर रहे हैं नहीं मिल रहा है, वो तुरंत प्राप्त हो जाता है। अरे इतना ईजी था क्या वो? बाप रे भाई, तो इतना दिन से मेहनत कर रहा हूँ। और जब वो स्वभाव हमारा जागृत होता है तो फिर एक इच्छा ऐसी जूम करके ऊपर आती है कि मुझे भगवान चाहिए, कहाँ है भगवान, मुझे उनसे मिलना है, कैसे मिलूं, क्या करूं। जब ये इच्छा भगवान के नाम से जग जाती है, जागृत होती है, तब श्री गुरु का मिलन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिस भगवान को आप चाह रहे हो, वो भगवान सोचते हैं कि हाँ अभी ये जीव मुझे चाह रहा है, अभी मेरा कर्तव्य है कि इस जीव को मुझे मिलने की व्यवस्था करें, तो फिर वो श्री गुरु को भेजते हैं हमारे पास, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो उनको जोड़ने का पूरा लाइसेंस लेकर आते हैं हमारे लिए। उनके पास वो अथॉरिटी है, उनके पास वो पावर है। जैसे अभी वो कोशिश कर रहे हैं ना, वो कुछ ना कुछ उसमें पासवर्ड डाल के पूछने का, वो पासवर्ड जो है ना वो चालू करने के लिए, वो उनके पास है, उन्होंने दिया हुआ उसको। तो क्या होना चाहिए उसके लिए? हमारे अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। जब तक इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, कुछ नहीं मिलता है। कोई फ्री चीज नहीं है दुनिया, भगवान इतना चीप नहीं है कि पीछे पीछे भागेंगे आपके, आपको नहीं चाहिए वो फिर भी आपके पीछे भागेंगे, ऐसा नहीं है वो। क्योंकि बहुमूल्य वस्तु अगर आपने उतने महत्वपूर्ण तरीके से नहीं दिया, तो बहुमूल्य वस्तु भी बच्चा कैसा है ना, तो फेंक देता है, नॉलेज नहीं है उसको। अगर ये बच्चे के हाथ में मैंने कोई नूरू हीरा दे दिया, तो ऐसा गेंद गेंद खेल के खिड़की के बाहर फेंक देगा उसको, उसको वैल्यू नहीं उसकी। आपको दूंगा तो आप पूरा ऐसा बड़ा बॉक्स लेके आके कपट में 3-4 लॉक मार के अंदर रखेंगे, क्या फर्क है उसमें? वस्तु तो वही है, बस फर्क यही है कि आपको ज्ञान है उसके बारे में, उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। इसलिए भगवान के विषय में, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होने तक भगवान की प्राप्ति होने की शुरुआत नहीं हो सकती। जब सिंसियर प्रामाणिक नेक इच्छा उत्पन्न होती है, तब जाकर वो दया से करुणा से आप लोगों की, हम लोगों की, जीव की प्रामाणिक इच्छा को देखकर गुरु को भेजते हैं। इसमें और एक उदाहरण है, जब तक आपके जेब में गुड़ नहीं होता है, तब तो चीटी नहीं आती है। आती है क्या? पैसे रखे बहुत सारे डॉलर्स, तो चीटी आएगी उधर? नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप गुड़ रखेंगे जेब में, तो चीटियों को बुलाना नहीं पड़ता है, आप बिना बुलाए आके काटने लगेंगे आपको। तो वैसे ही जैसे ही आपके हृदय में भगवान को पाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, अपने आप गुरु आपके जीवन में आ जाते हैं, उनकी मुलाकात हो जाती है। और मनुष्य जीवन का सर्वोच्च भाग्य में क्षण हुए है जब सदगुरु की मुलाकात होती है। आप भक्ति भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, भगवान का नाम भी जप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके दिल में इच्छा नहीं उत्पन्न हो रही है, अभी भी चल रहा है, यहाँ ये भी करते रहो वो भी करते रहो, लोग बोलते हैं सब करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए, चर्च में भी जाना चाहिए, पिक्चर भी देखना चाहिए, और सब कुछ करना चाहिए, बेस्ट ऑफ बोथ, यू एंजॉय. बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना, सब जगह जाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, इसमें क्या है, एवरीथिंग इज लाइफ को एंजॉय ओनली, आपके लिए बनाया सब. तो फिर वो क्या हो रहा है, वो बेबी की तरह है, वो अभी तक उसका हेड ना वो गर्भ में है लेकिन उसका हेड अब तक फिक्स नहीं हुआ है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है. हमारे मेडिकल में होता है ना ऐसे, 9 मंथ हो गया है पूरा लेकिन अभी हेड फिक्सिंग नहीं हुआ है, बेबी ऐसा गोल गोल ही घूम रहा है, तो डिलीवरी नहीं हो सकता है. जब हेड फिक्स हो जाएगा तो डिलीवरी हो जाएगा, नहीं तो हेड वो तब तक डॉक्टर को वेट करना पड़ता है, व्हेन विल द हेड बी फिक्स्ड. उसी तरह से नाम भी कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन अब तक विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है कि आपको भगवान चाहिए, तब तक नहीं होगा. लेकिन जब इच्छा होगी तो वो आएंगे. वो सबसे बड़ी भाग्यवान घड़ी है. इसलिए आपका संतों के साथ संग हो गया, भगवान के नाम का परिचय हो गया, भगवान के बारे में नॉलेज मिल रहा है, उसके बाद भी आपके अंदर जगह इच्छा नहीं जग रही है, तो वो भी फ्री भाग्यवान स्थिति नहीं है, दुर्भाग्य है. मतलब भाग्य है लेकिन वो आपको समझ में नहीं आ रहा है अब तक. गुरु मिले जिसको, उसका मतलब उसने सीरियसली भगवान को प्राप्त करने की इच्छा की है, उसी को गुरु मिलते हैं. बाकी सब स्पिरिचुअल होते हैं, पहुंचते किधर भी नहीं है. वो इस तरह से है कि आपने सुंदर मोतियों के अक्षर जैसे अक्षर से एक प्रेम भरा खत लिखा है, और सुंदर बहुत महंगी डिजाइनर पेपर पे उस सुंदर मोती जैसे अक्षर में खत लिखा है, लेकिन उसको पोस्ट बॉक्स में डाला नहीं है, तो क्या होगा? आपकी भावनाएं इतनी सुंदर तरीके से आपने लिखी है, जिसके प्रति भावना लिखी थी वो उसके प्रति पहुंचेगी क्या? वो आपको सारी प्रोसीजर पूरी करने पड़ेगी ना. लिखा तो आपने अच्छी तरह से है, उसको फोल्ड किया, एनवेलप डाला, स्टैंप लगाया और बोनाफाइड पोस्ट बॉक्स में डाला, तभी जाकर जिसके लिए लिखा था उधर पहुंचेगा वो. उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ सब कर रहे हैं लेकिन अभी तक भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं हो रही है, तब तक उधर ही बार 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 आते रहेंगे. वो फ्लोटिंग बेबी की तरह है, नो डिलीवरी, ओनली फ्लोटिंग फ्लोटिंग एंड फ्लोटिंग एंड मोर फ्लोटिंग एंड मोर फ्लोटिंग. मतलब मदर्स डेथ, बस ओवर टाइम हो गया, ओवर मैच्योर हो गया, तो अंदर ही मर जाएगा, वो खुद भी मरेगा और मम्मी को भी मारेगा. सो अगर डिलीवरेंस चाहिए हमको तो हमको भगवान के प्रति इच्छा निर्माण करना ही पड़ेगा. और जैसे गुरु जी मिलते हैं, वो जब मैग्नेट जब भी आता है सामने आयन के, तो क्या होता है बताइए? दिशा बदलता ना, दिशा इधर देख रहा है आयन, तो इधर से मैग्नेट आ गया तो बदल हो जाएगा, तुरंत बदल हो जाएगा, है ना. वैसे ही आपको श्री गुरु, जो आपके सदगुरु हैं, जो भगवान ने आपके लिए भेजे हैं, आपकी तीव्र इच्छा निर्माण होने के बाद में जब से आपको मिलेंगे ना, टुंग टुंग अंदर कुछ बजेगा आपके, कि लगेगा यही है, मुझे इनसे जुड़ना है, यही मेरा रास्ता है. ऐसे आपको अनुभूति होगी अंदर से, दूसरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो आत्मा परमात्मा का संबंध जो है ना, वो इस प्रकार से है. वो आत्मा और सदगुरु का जो आत्मा है, उनसे आपका तुरंत कनेक्शन हो जाएगा. ऐसा आकर्षण उत्पन्न होगा आपके जीवन में कि वही आपको परम आनंद का अनुभव कराने लगेगा. उनका अस्तित्व, उनका सानिध्य, उनका मुलाकात, उनका प्रेम, उनका जो बोल रहे हैं उसका, उनके शब्द, उनका संग आपको ऐसा प्रेरित करेगा, लगेगा कि यही मेरा रास्ता है. तो फिर आगे बढ़ेंगे. कितने स्टेप बताए मैंने आपको? पहले सत्संग, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद भगवान का नाम, उसके बाद भगवान को पाने की इच्छा, उसके बाद सदगुरु की मुलाकात, पहली मुलाकात, उसके बाद आकर्षण. यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है, इतना होने पर भी खत्म नहीं होता है. उसके बाद अनुग्रह, मतलब जब आप वो आपको स्वीकार करेंगे, आप उनको स्वीकार करेंगे मेरे गुरु की तरह, वो आपको शिष्य की तरह स्वीकार करेंगे, तब आपका काम शुरू हुआ. अभी तक आप शुरू करने के लिए केवल तैयारी ही कर रहे थे, ओनली प्रिपरेशन फॉर इनिशिएशन. बहुत लोग सोचते हैं कि इनिशिएशन मतलब द एंड ऑफ लाइफ, आई हैव अचीव्ड माय गोल, दीक्षा लिया मतलब मैंने सब कुछ हासिल कर लिया. नहीं भाई और बहनों, सब समझो आप, इतनी सारी स्टेप्स जो बताई ना हमने अभी दीक्षा तक की, ये खाली आपकी तैयारी थी, शुरुआत करने की तैयारी थी। आई विल रिपीट अगेन, इट इज जस्ट प्रिपरेशन टू स्टार्ट, इट इज नॉट स्टार्टेड इट। एक बार अनुग्रह हो गया मतलब आपका प्रिपरेशन शुरू हो गया। किसका प्रिपरेशन? भगवान को प्राप्त करने का प्रिपरेशन शुरू हो गया आपका। लोग समझते हैं दीक्षा मिल गया मतलब भगवान को प्राप्त कर लिया। नो, इट इज जस्ट बिगिनिंग। उसके आगे आपको बहुत लंबी मंजिल जान तय करना, लंबा रास्ता तय करना है। वो बहुत उसमें कांटे होंगे, पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे, बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, बहुत सारे चैलेंज होंगे, चुनौतियां होंगी, बहुत सारे संकट आएंगे, आप निराश भी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, से बहुत सारे मोड़ आएंगे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, कभी पानी आएगा, कभी पत्थर आएगा, कभी कांटे आएंगे, कभी कुछ आएगा, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद में ये सब आप अगर अच्छे निश्चय के साथ, अच्छे पवित्रता के साथ, अच्छे प्रयास के साथ आप चलते रहेंगे, बैठेंगे नहीं किधर निराश होकर, तो एक दिन फिर उनकी कृपा से भगवान की मुलाकात होगी। लेकिन ये सारी तैयारियों के बाद में जब शुरुआत आप शुरुआत करेंगे, हाँ शुरू करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि जो मैंने तैयारियां की वो तो 1000वां हिस्सा भी नहीं था उसका, इतना आगे मंजिल है हमारी, इतनी दूर है। हमको लगा अरे मैं तो 10 साल से जप कर रहा हूं, भी तो दीक्षा नहीं हुई है, 10 साल हो गए, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन 10 साल के बाद जब दीक्षा मिलेगी तो आपको लगेगा कि 1000ों साल का रास्ता आगे है भगवान को प्राप्त करने का। मतलब साल का चिंता मत करो, बहुत मंजिल दूर है। बहुत सारे स्टेप्स आप याद आए ना, आपको याद रखना है स्टेप्स को, ये सारे स्टेप्स को आपको आगे आगे ही चलना है, बीच में कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि रुकेंगे तो वही रह जाएंगे आप, मंजिल तो बहुत दूर है। इसलिए मनुष्य जीवन का सर्वोच्च भाग्यमय क्षण वो है जब सद्गुरु का परिचय होता है, संबंध होता है, उनका अनुग्रह होता है। फिर एक बार सद्गुरु का संबंध आपका हो गया और आप ऐसे बैठने गए उसके बाद, हाँ अभी हो गया, ऐसा नहीं, उसका आगे भी आपको दौड़ना है, तो फिर भगवान की प्राप्ति आपके लिए निश्चित है। उसके आगे भी लोग पदभ्रष्ट होते हैं, आपका अनुग्रह भी हो गया उसके बाद भी आप छोड़ सकते हो, नहीं करना है मुझे, ऐसा जीवन में हादसा होगा, हो सकता है बीवी की मौत होगी, हो सकता है आग घर जल जाएगा, हो सकता है कुछ और शेयर मार्केट क्रैश होगा तो आपका पूरा इकोनॉमी क्रैश हो जाएगा, ऐसे भयंकर संकट आ सकते हैं और आप कहते हैं हरे कृष्णा अभी मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ बहुत टाइम पास किया मैंने इसमें, नहीं करना है मुझे कुछ, आई डोंट हैव फेथ, ऐसा बकवास है, ऐसा लग सकता है आपको। इसलिए मैंने क्या कहा कि सतत्य होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार बेसुमार करते रहना चाहिए, तब जाके मिलेगा। बहुत रास्ते में बाधाएं हैं, उसको पकड़ कर रखना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारना होगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, श्रद्धा का रूपांतर निष्ठा में करना पड़ेगा। श्रद्धा कोमल होती है, निष्ठा कठोर होती है। निष्ठा उसको कहते हैं जो बदल नहीं सकती है, चाहे जितने आंधी तूफान आ जाए। इसलिए आप लोग में से कुछ लोग कल गुरु आश्रय ले रहे हैं और कुछ लोग गुरु दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है, इट्स अ वेरी सीरियस कमिटमेंट। तुलना के लिए बताया जाए तो विवाह का तुलना कर सकते हैं, हमारे विवाह कैसा होता है? भारतीय विवाह, वेस्टर्न विवाह नहीं, तो दिन में 2 बार होते हैं, वो विवाह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी के तारीख लाइफ में कैसा है, विवाह दिन में 2 बार हो सकता है, हफ्ते में 1 बार हो सकता है, हर हफ्ते में नई बीवी, दैट इज नॉट विवाह। विवाह संस्कार की बात कर रहे हैं, बंधन की बात कर रहे हैं, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। वो केवल मनुष्य के जीवन में एक ही बार होता है और एक ही बार होता है और उसको जिंदगी भर निभाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार उसको विश्वास के साथ स्वीकार कर लिया, उसी को जिंदगी भर निभाना है, लाइफ के एंड तक निभाना है। तो जब हम विवाह करते हैं ना, जैसे पुरोहित के रूप में जब भी मैं संस्कार करता हूं किसी का, तो बार बार बताते हैं दिस इज अ सीरियस कमिटमेंट, इट्स नॉट जस्ट फन, इट्स नॉट जस्ट टाइम पास, कभी भी छोड़ सकते हैं। तो एक पत्नी व्रता मनुष्य के लिए बताया गया है और एक पतिव्रता, उसी प्रकार से गुरु होता है, आज लगेगा कि ये गुरु अच्छे हैं, बहुत पावरफुल है, बहुत फॉलोअर्स हैं इनके, कल लगेगा कि अरे तो हमारे लिए अनुकूल आदेश नहीं दे रहे हैं, कुछ डिफिकल्टी आदेश बोलते हैं, वो वाले अच्छे हैं, वो सिंपल बोलते हैं, तो इसको चेंज करके उधर जाते हैं। और वहाँ जाके कुछ दिन समय तक अच्छा लगता है, आदमी बोलता है ये भी डिफिकल्ट है, दूसरे लेंगे, वो अच्छे हैं। तो गुरु का अनुग्रह ये शॉपिंग मॉल नहीं है, गुरु का अनुग्रह शॉपिंग मॉल नहीं है। ये दुकान में साड़ी अच्छी लगी तो यहां से लिया, नहीं लगे दूसरे दुकान में लिया, 10 साड़ी देखी और उसमें से एक चुन लिया, तो वापस उसको भी चेंज कर लेने, ये नहीं चाहिए, अलग रंग चाहिए, ऐसा शॉपिंग मॉल नहीं है गुरु की, गुरु की दीक्षा बहुत गंभीर बात है। आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद में कोई विचार नहीं करना है, बुद्धि का इस्तेमाल तब तक करना है जब तक आप गुरु को चयन कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तब तक आप बुद्धि का इस्तेमाल करो। एक बार बुद्धि का उपयोग करके गुरु चुन लिया आपने, उसके बाद में बुद्धि को रखना है बाजू में और दिल से काम करना है। सब लोग सेटल हो गए क्या? क्योंकि जब तक आप सेटल नहीं होंगे हमारी बात आपके अंदर सेटल नहीं होगी। क्या सेटल हो जाइए, स्थिर हो जाइए, बहुत गंभीर विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कह रहा था बताइए मुझे आप, मैं क्या कह रहा था अभी? तो जब तक आप चुन रहे हो गुरु को, देख रहे हो कौन से मेरे गुरु हैं, कहां पर मेरी शरणागति की भावना हो रही है, तब तक बुद्धि का इस्तेमाल करो। एक बार अनुग्रह ले लिया आपने, शरणागति मंत्र ले लिया, आश्रय ले लिया, उसका बुद्धि से काम नहीं करना है, उसका दिल से काम करना है, वो बहुत आवश्यक है। दिमाग हमको केवल चुनने के लिए दिया है, समझने के लिए अच्छा बुरा क्या है, और एक बार अच्छा चुन लिया बार बार उसमें विचार नहीं करना है। फिर एक ही रास्ता है उस व्यक्ति के लिए, वो है शरणागति। नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे, केवल आज्ञा पालन, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य, बस इससे बड़ा मंत्र उसके लिए कोई नहीं, इससे बड़ा आदेश कोई नहीं उसके लिए, उसके बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं उसके लिए। एक बार आपने दीक्षा ग्रहण के लिए, और मैं आपको बता रहा हूं यकीन से, अगर आप गुरु के साथ संबंध करके अगर शरणागति का जीवन बिता रहे हैं, उससे बड़ा आनंद जीवन में कोई नहीं है, मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं। कितने भी संकट आएंगे आपके जीवन में, अगर आप गुरु के साथ शरणागत हो तो उस कठिनाइयों में भी आपको आनंद का अनुभव होगा। ये ऐसे बताने जैसा है कि इसमें बहुत अच्छा फल का रस है, बहुत मीठा है, गुलाबी रंग का है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसे वर्णन करते रहूंगा तो कोई लाभ नहीं होगा आपको, उसको आपको खोल के पीना पड़ेगा खुद। तो जब तक मैं बोलते रहूंगा, जब गुरु की शरण लेते हो और बहुत कठिनाइयां आती है और मैं शरणागति रहता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, बड़ा आनंद आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि ये अनुभव की बातें हैं, प्रवचन की बातें नहीं है। प्रवचन से हम समझते हैं, लेकिन आखिर तक अगर अनुभव करने के रास्ते पे नहीं आएंगे तो फिर ये सभी हवा में रहेगा, जैसे शहद की बोतल में शहद रहेगा, वो बोतल में ही रहेगा, हम दूर से देखते रहेंगे और प्रवचन सुनते रहेंगे उसके बारे में, उसके अंदर क्या है। ये बहुत ही सुंदर जीवन है। जैसे राजा की ना अनेक रानियां होती हैं और एक पटरानी होती है, क्या फर्क होता है उसके अंदर? पटरानी को बहुत राजा का दिल होता है, उसके साथ वो बैठता है, उठता है, उसके साथ संग करता है, हृदय का आदान प्रदान भावनाओं का करता है, सबसे अधिक उसी को संभाल के रखता है, उसको जो चाहिए वो सुख देता है। तो शरणागत शिष्य जो होते हैं वो गुरु की पटरानी के, राजा की पटरानी की तरह होते हैं, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। और जो गुरु के पट्ट शिष्य कहते हैं उसको, पट्ट शिष्य मतलब क्या होता है? पट्ट शिष्य कब बनते हैं कोई? जब शरणागति होता है पट्ट शिष्य बनता है। पट्ट शिष्य कोई पदवी नहीं है कि 5 साल के बाद पट्ट शिष्य बन जाएगा, ऐसा नहीं। पट्ट शिष्य यानी जो शरणागत है, और जो शरणागत है वो गुरु को प्रिय होता है। ये नहीं कि मेरे लिए शरणागत है इसलिए नहीं, ये भगवान की ओर निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि भगवान ने तय किया वो कि जो मेरे सत सत शुद्ध भक्त के शरणागत होगा वो मुझे प्राप्त करेगा। ये भगवान ने रास्ता बनाया, गुरु ने नहीं बनाया, गुरु केवल उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गुरु इज रिप्रेजेंटिंग द सुप्रीम लॉर्ड, बस वो उनकी इच्छा का पालन कर रहे हो। हमको भी वही करना है, वो शरणागति रहेगी तब तक आपको आनंद का प्रवाह चलता रहेगा जिंदगी में। जिस दिन शरणागति कट हो जाएगी कुछ समय के लिए आप दुख का अनुभव करेंगे, सोचे ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज हैपनिंग लाइक दिस। शरणागति भी एक ऐसी वस्तु है जो सातत्य पूर्ण होनी चाहिए, इट हैज टू बी कंटिन्यूअस। कल आप शरणागत थे, बोले 10 साल शरणागत था, आज एक दिन ब्रेक लिया मैंने तो आज का आनंद समाप्त हो गया आपका। 10 साल खाना खाया मैंने, आज नहीं खाया तो क्या होगा, दुर्बल हो जाएंगे आप। 10 साल तक बढ़िया बढ़िया माल खाया आपने और उसका वास्ता देकर बोल रहे तो क्या हुआ, 10 साल खाया तो क्या, आज नहीं खाया तो क्या हुआ, 10 साल खाया ना मैंने, आज भी खाना पड़ेगा और कल भी खाना पड़ेगा, परसों भी खाना पड़ेगा, रोज खाना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये सत्य है उसी प्रकार से गुरु की शरणागति भी सत्य उसी प्रकार से है। आपको हर क्षण हर पल सातत्य पूर्णता से शरणागति का अनुभव करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा उसको। अब ये सब बातें मैंने आपके लिए बताई, अभी हम ना ये सारा विषय उस तरफ से सोचने का प्रयास करेंगे। किस तरफ से, गुरु की तरफ से। अब तक हमने हमारा विचार क्या करना है, हमको क्या करना है, गुरु जी क्या करते हैं। जो जीव उनके प्रति शरणागत होता है उसके सारे जितने भी कर्म हैं वो सब ले लेते हैं। अभी आपके सर पे 100 किलो का बोझा दिया मैंने, 100 किलो का वजन दिया, बोले भागो अभी आप एयरपोर्ट तक, तो भागेंगे आप, लेकिन आपकी स्पीड क्या होगी, हार्डली एनीथिंग, थके रहेंगे आप बीच में, जब रुकेंगे रुकेंगे पसीना आएगा आपको, पसीना पोंछेंगे, फिर कोशिश करेंगे, लेकिन भाग नहीं पाएंगे आप, एट द मोस्ट चल पाएंगे। लेकिन आपको देख रहा, मैं देख रहा हूँ कितने सिंसियर है आप, कितना कोशिश कर रहे हैं, कितना भागने का प्रयास कर रहे हैं। अरे 100 किलो का वजन है और रास्ते में मैं बीच में आता हूँ, एक ट्रक में आता हूँ ऐसे, और ट्रक आपके पास बाजू में रुकाता हूँ और आपका बोझा उठा के ट्रक में डालता हूँ और अभी भागो आप, तो क्या करेंगे आप, जोर से भागेंगे, क्योंकि आपको भागना है, इतना निश्चित है। आप भाग नहीं पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपके सर पे वजन है। लेकिन जैसे ही ट्रक आके आपका वजन उठा लेता है तो आप भाग सकते हो। इसीलिए गुरु महाराज हमारे पाप का बोझा ले लेते हैं, क्योंकि पाप का बोझा जब तक आपके सर के ऊपर है आप भगवान की ओर भाग नहीं सकते हो, चल सकते हो कूर्म गति से। इसलिए दीक्षा के समय जैसा आप निश्चय कर लेते हो, गंभीर निश्चय कर लेते हो कि आज से मेरी जिंदगी इनके चरणों में है, जो ये कहेंगे मैं करूंगा, उस दिन आपकी कमिटमेंट को देखते हुए वो आपके सारे कर्मों को अपने सर पे लेते हैं ताकि आप भाग सको। अभी ये उन्होंने पहला कदम उठाया आपके लिए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपके कोई लगते नहीं, वो माँ पिता जन्म के कोई रिश्ता नहीं, भाई बहन नहीं आपके कोई, वो चाचा अंकल मामा कुछ नहीं है, वो आपके वो सद्गुरु हैं, आपके खून के रिश्तेदार नहीं है वो, फिर भी आपके लिए आपके हृदय में निश्चय देखते हुए आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों को लेते हैं, इस जन्म के नहीं। जो आप पूरा पैकेज लेके आए ना, अपना पूरा पैकेज, कई जन्मों का पैकेज है आपके पास, वो सब ले लेते हैं। और सेकंड चीज क्या करते हैं, वो आपके लिए कमिटेड रहते हैं, केवल इस लाइफ के लिए नहीं जो आप इस शरीर में जी रहे हो, जहां तक आपकी आत्मा इस दुनिया में रहेगी, जब तक यहाँ से भगवत धाम तक नहीं जाएगी, कितने जन्म आप लेंगे तब तक वो आपसे कमिटेड रहेंगे। यानी गुरु का और आपका जो रिश्ता है वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। गौलोक धाम भगवान के धाम जाने के बाद, भगवान को मिलने के बाद भी गुरु रहते हैं। ये भी मत समझना कि मैं भगवत धाम पहुंच गया, भगवान से मिल गया, अभी गुरु का क्या काम, छोड़ दो उनको। अभी उधर भी वहां का जो जीवन है जो आप जिएंगे वो भी उनके ही आश्रय में जिएंगे, उनके निर्देश में जिएंगे, उनकी इच्छा के अनुसार आपको गाइडेंस मिलेगा कैसे भगवान को वहां पर भी प्रसन्न करना है। तो इंपॉर्टेंट बात समझने की क्या है, गुरु और शिष्य का रिश्ता जो है वो जन्म जन्मांतर का है, ये भी वाक्य सत्य नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर तक भी दुनिया आप यहाँ में आप जी रहे हो तब तक ये वर्ड अप्रोप्रिएट वर्ड है। जन्म जन्मांतर तक मतलब क्या, आप बहुत जन्म लेंगे इस दुनिया में तब तक है नहीं, शाश्वत काल तक कहना ये सत्य है। यहाँ पर हो आप या वहां पर हो, जब तक हम हैं मतलब शाश्वत काल के लिए, तब तक आज के बाद में उनका रिश्ता रहेगा। इसलिए मैंने कहा उसमें चेंज करने का कोई काम नहीं है बीच में, कि पसंद नहीं आ रहा है अभी, इनका रंग बहुत काला है, हमको और रंग वाला गुरु चाहिए, ऐसा बीच में चेंज नहीं होगा। क्योंकि गुरु जी जो है वो भी आत्मा है, आप भी आत्मा हैं, वो भी चिरंतन है, आप भी चिरंतन हैं, और आपने एक बार रिश्ता बनाया उनसे दीक्षा के माध्यम से, तो आपका और उनका रिश्ता चिरंतन हो गया अनंत काल तक। जब तक सृष्टि है, जब तक गोलोक वृंदावन है, जब तक कृष्ण है, तब तक आपका ये रिश्ता रहेगा उनके साथ में। कितनी बातें बताई मैंने आपको, पहली बात बताई कि गुरुजी आपका कर्म ले लेंगे, दूसरी बात बताई कि उनका आपका संबंध जो है वो चिरंतन है, उनकी कमिटमेंट आपकी तरफ चिरंतन है, परमानेंट है। थर्ड बात यह है कि इसके बाद में ये सब होने के बाद में कर्म ले लिए उन्होंने आपके, उसके बाद भी आप जो कर्म करेंगे वो भी वो लेते रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा है ना। सो इजी लाइफ नाउ, एवरीथिंग आई डू ही विल सफर, मुझे को सफर ही नहीं करना, ऐसा नहीं है। आपको भी सफरिंग होगी, लेकिन आपको सफरिंग होगी तो वी डोंट केयर, बट आपके वजह से उनको सफरिंग होगी तो वी रियली केयर, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं, हमको कोई अधिकार नहीं हमारे गुरु जी को सफर करवाने के लिए, इसलिए कि उन्होंने आपका जिम्मेदारी लिया है। कोई आपके माँ बाप बने इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनेगारी करते रहे और वो कष्ट सहते रहे, नहीं, बेहतर ये होगा कि हमारे तरफ से कम कष्ट उनको हो। और अगर कुछ होना ही है, अभी चौथी बात बता रहा हूँ, चौथी बात, अगर कुछ होना ही है तो हमारी वजह से उनको आनंद होना चाहिए, हमारे होने से उनको गर्व होना चाहिए कि ये मेरा शिष्य है। ये लोगों को पूछना चाहिए इतना बढ़िया आदमी किसका शिष्य है, तो कहेंगे इनका शिष्य है, तो उनका गौरव बढ़ना चाहिए आपकी वजह से। दिस इज द बेस्ट डिसाइपल, केवल उन्होंने कर्म लिए इसलिए हम उनको कर्म से भर रहे हैं अपने पापों से, ताकि वो भोगते रहे। हाँ, वो क्रिश्चियन धर्म में ऐसे कहते हैं ना कि जीसस केम टू टेक आवर सिंस, सो वी विल कंटिन्यू आवर सिनिंग, लेट हिम गो ऑन सफरिंग, लेट हिम गो ऑन गोइंग ऑन द क्रॉस अगेन एंड अगेन, एंड आई विल कीप ऑन एंजॉइंग। ये प्रवृत्ति बहुत नारकीय प्रवृत्ति है, नरकवास के योग्य प्रवृत्ति है, वो नरक में जाएगा। जिस व्यक्ति ने हमारे पर उतना उपकार किया है, हमारे जन्मों जन्मों के पुण्य पाप जो है वो स्वीकार किए हैं, दुख दुख वाले, उसको ऑलरेडी हम कष्ट दे चुके हैं हमारे पुराने वाले कर्मों से, उसको तकलीफ उठाते हैं गुरु महाराज, तो इतना हमारे लिए उन्होंने सहायता किया है, इतना हमारे ऊपर उपकार किया है, इतना कृतज्ञ हुआ है हमसे, तो हमारा उत्तरदायित्व ही है कि हम उनको और कष्ट न दें, और कोई कार्य ऐसा ना करें जो उनको कष्ट पहुंचे, क्योंकि जहां कहीं भी दुनिया में है वो हमारे कर्मों को लेते रहेंगे और उसको भोगते रहेंगे। जब भी आप गुरु महाराज को देखते हो कभी, और गुरु महाराज को देखते हैं कि उनको बुखार आ रहा है, कोई कष्ट हो रहा है, कोई उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, कुछ किडनी का ऑपरेशन हुआ, ऐसे होता है ना बहुत बार, वो अपने कर्मों का भोग नहीं भोग रहे हैं, वो उनके शिष्यों के कर्म का भोग रहे हैं, फल भोग रहे हैं। सदगुरु के कोई पाप पुण्य नहीं होते, इसलिए वो सदगुरु हैं, वो पाप पुण्य के परे जा चुके हैं, इसलिए वो सदगुरु हैं, रियलाइज सोल, साक्षात्कारी आत्मा है वो। वो अपने कर्मों का भोग नहीं भोगते हैं, जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, परम करुणा के कारण वो सब जीवों का आके कर्म ले रहे हैं, उनको भगवान के रास्ता सुधारने के लिए। इसलिए कोई भी गुरु जो है वो अपने कर्म का फल नहीं भोगता है, वो अपने शिष्यों के ही पापों का फल भोगते रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति मनुष्य है, मतलब उसको अगर बुद्धि है, अक्ल है उसको, तो पता होना चाहिए कि मेरे वजह से ये भोग रहे हैं, तो मुझे मेरे जीवन को सुधारना पड़ेगा, शुद्ध रास्ते पे लाना पड़ेगा, उनके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, निष्ठा के साथ उनके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और बार बार लगातार हमको ये विचार करना चाहिए कि मेरी वजह से मेरे गुरु को कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए। एक लेवल हो गया, और मेरी वजह से अगर होना है तो गुरु को गौरव बढ़ना चाहिए, इसी बात को चलना चाहिए लेके। वही सच्चा शिष्य है। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की शिक्षा पर चलता है, उसको ही शिष्य कहते हैं। उसका जीवन केवल गुरु की शिक्षा के आज्ञा का पालन करने के लिए उसका जीवन है, और अन्य उसके जीवन में कुछ नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्वयं आनंद होता है, और ऐसे व्यक्ति की वजह से गुरु जी के जीवन में भी आनंद प्राप्त होता है। इसलिए बनना है तो ऐसे शिष्य बनो, नामधारी शिष्य मत बनो कि हमारे भी बॉल में फोटो लगाए हैं, हमारे भी गुरु है कोई, ऐसे हमको शिष्य नहीं बनना है। गुरु जी को आपको भगवान के पास ले जाने का रास्ता जो है हमको आसान कराना है, हमको उनका रास्ता डिफिकल्ट नहीं कराना है। हमको ही भगवान के पास ले जाने का रास्ता जो है हमको अपने कार्यों से कठिन नहीं बनाना है, उनके लिए आसान बनाना है। इसलिए नियम दिए हैं, वो नियम को जिंदगी भर पालन करना है। कुछ समय के लिए प्रोग्राम नहीं है, वो शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स नहीं है, वो जीवन भर का कमिटमेंट है। इसलिए जो भी लोग ये सुन रहे हैं और अभी आश्रय में भी नहीं है और अनुग्रह भी नहीं मिलने वाला है उनके लिए भी, और जो लोग आश्रय ले रहे हैं और दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी, ये बहुत गंभीर विषय है। और ये गंभीर विषय आपके लिए है, मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। ये गंभीर विषय आप सबके लिए, हमारे सबके लिए है। और अगर हम वैसे शिष्य बनेंगे जो हमेशा शरणागत रहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, निश्चित रूप से आप और हम भगवान के साथ होंगे एक दिन, निश्चित रूप से। उसमें कोई गारंटी, कोई संदेह नहीं है उसके अंदर, कोई डाउट नहीं है उसके। अरे एक दिन क्यों होंगे, आज भी उनके साथ में हैं, यह भी अनुभव होगा आपको। उनकी कृपा से होगा, गुरु जी की कृपा से आपको हर दिन आप भगवान के साथ है, भगवान आपके साथ है, इसकी अनुभूति होगी। मराठी में क्या कहते हैं, जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, चालविशी हाथी धरुनिया। जो ऐसे शिष्य होते हैं गुरु जी के, आप बैठ जाइए उधर ही। तो मैं ये कह रहा था कि जेथे जातो तेथे तू माजा सांगाती। एक बार हम शरणागत भक्त बन गए तो जहां पर भी हम रहते हैं, जहां पर भी जाते हैं, हमारे संग भगवान रहते हैं, गुरु की कृपा रहती है। केवल संग नहीं रहते हैं, हाथ पकड़कर लेके जाते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को चलाते हैं रास्ते पर, हाथ पकड़कर उसको सुरक्षित रूप से रास्ता क्रॉस करके ले जाते हो, स्कूल पहुंचाते हो। ये अनुभव आपको रोज होगा, भले आपके गुरुजी आपके 10,000 मील दूर रहेंगे परदेश में, लेकिन जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसका रोज दिव्य रूप से, आध्यात्मिक रूप से हाथ पकड़कर गुरुजी चलाते हैं। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक शिष्य के जीवन में वो गुरु के संग रहना नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। वो गुरु के संग रह के करना है तो उनकी इच्छा से कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो गई कि आपको उनके आदेश में पालन करने के लिए उनसे दूर रहना पड़ेगा तो भी आप गुरु के साथ में ही हो। गुरु का सच्चा संग कब होता है, जब शिष्य उसके आज्ञा का पालन करता है। वो कहीं दूर भी रहेगा या शरीर छोड़ के अगर उनका क्या कहते हैं उसको, अंतर्धान हो गए होंगे वो, शायद शरीर उनका समाप्त हो गया रहेगा, मतलब मृत्यु हो गई रहेगी उनकी, फिर भी आपको उनका संग जो है निरंतर मिलेगा, क्योंकि गुरु का कभी अंत नहीं होता है। गुरु ये परमानेंट तत्व है, शाश्वत तत्व है। कितने भी आप दूर रहेंगे, कितने साल तक रहेंगे, आज्ञा पालन करेंगे तो आपको हर क्षण आपके जीवन में गुरु जी का व्यक्तिगत संग मिलेगा और भगवान का भी संग मिलेगा। ये सब बातें फिर से दोबारा बताता हूँ, ये सब अनुभव की बातें हैं। प्रवचन के आप सुनने के आपको श्रद्धा होगी तो अच्छा है, निर्माण होगी तो, लेकिन सारी बातें अनुभव की बातें हैं। ये ऐसा विषय है जो अनुभव करने वाले को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसका अनुभव नहीं हुआ है वो सोच रहा है क्या है ये, ऐसा लगे। लेकिन शाश्वती इस बात की है, निश्चित ही इस बात की है कि जो व्यक्ति गुरु जी की आज्ञा का पालन करता है उसके साथ हमेशा गुरु और भगवान सतत रहते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसलिए आइए सब लोग, इस नए प्रकार के जीवन में आप सबका स्वागत है। इन द न्यू वर्ल्ड, इन द न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टेंट एसोसिएशन ऑफ गुरु एंड कृष्णा, यू आर वेलकम इन दिस डिवाइन वर्ल्ड। उसके लिए मरने की आवश्यकता नहीं है कि मरने के बाद में ही आपको मोक्ष मिलेगा, फिर भगवान के पास जाएंगे। आज आप भगवान के साथ संग कर सकते हैं, इतनी शक्ति है गुरु में, जो केवल अपनी आज्ञा देकर आपको भगवान, साक्षात भगवान का संग करा सकते हैं। बहुत भाग्यवान वस्तु है ये जीवन की, और जिसको ये प्राप्त है उसको पता है कि उसका भाग्य क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे बड़ी इच्छा गुरु की क्या होती है शिष्य के प्रति? गुरु जी क्या चाहते हैं आपसे? व्हाट डज ही वांट? वो चाहते हैं कि मेरा शिष्य जो है वो भगवान से मिले, भगवान को प्राप्त करें, है ना? और कुछ चाहते नहीं आपसे वो, कि आप उनको दक्षिणा दें, उनको पैसा दें, उनको हेलीकॉप्टर में घुमाएं, उनको हवाई जहाज में घुमाएं, इज नॉट इंटरेस्टेड। आपके किसी भी ऐश्वर्य में उनको इंटरेस्ट नहीं है, ना अट्रैक्शन है उनको। आप कितने बड़े आदमी, प्रधानमंत्री होंगे देश के, ही डजंट केयर, क्योंकि दुनियादारी के किसी भी चीज से वो प्रभावित नहीं होते हैं। या कोई प्रधानमंत्री शिष्य बन गया तो उनका मान सम्मान बढ़ता नहीं है कि प्रधानमंत्री उनका शिष्य है, लोग समझेंगे वाह बड़ी बात है प्रधानमंत्री के गुरु है। लेकिन वो प्रधानमंत्री होने से या ऐश्वर्य संपन्न रिचेस्ट मैन होने से गुरु जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कर्म तो उनको लेने ही है, अमीर आदमी के गरीब आदमी के, उनको तो कष्ट सहना ही है उनका। लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनको उनके साथ संग करके भगवान की प्राप्ति करें। और गुरु के मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है, अगर स्वार्थ है तो गुरु ही नहीं है वो। गुरुदेव केवल शिष्य का अंतिम कल्याण चाहते हैं, और जीवन जीव का अंतिम कल्याण केवल भगवान को मिलने में ही है और किसी में नहीं, नथिंग एल्स। आपको ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर कोई आनंद है तो वो भगवान के मिलन के साथ ही है और कोई नहीं है, देयर इज नो अदर हैप्पीनेस। बाकी सब भूल भुलैया है, हम लोग सब भटक रहे हैं उसके अंदर, केवल भूल भुलैया भटक रहे हैं, इल्यूजन। और वो उसको इल्यूजन को फाड़ने के लिए गुरु जी खड़े रहते उधर कि मेरा शिष्य जो है वो भ्रम में ना फंसे, हाँ भूल भुलैया में ना फंसे, इसलिए वो बार बार मेहनत करते रहते हैं। अरे कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक गुरु वापस आते हैं उस भटके हुए शिष्य को वापस लाने के लिए। बिलवा मुगल ठाकुर के लिए वो वेश्या बनकर आए थे, क्योंकि एक जीवन में वो वेश्या के पीछे पागल थे, तो वेश्या के रूप में आकर उन्हें उपदेश किया उनको, तब जाके आंखें खुली तो उद्धार हो गया उनका। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे गुरु को हमारे लिए वेश्या बन के आना पड़े जगाने के लिए भ्रम के रास्ते से। उनको ऐसा करना चाहिए जिससे गुरु का गौरव बढ़े, जो रास्ते में वो लेना चाहते हैं उस रास्ते में हम प्रगति कर सके, ये हमारी तमन्ना होनी चाहिए। जो वो चाहते हैं वही हमको पूरा करना है बस, वो हमारे मन को जचे या न जचे। वो कुछ सेवा दे रहे हैं, बोले अरे महाराज तुम्हें डॉक्टर हूं मुझे मेडिकल सेवा देना चाहिए, वो सोचना नहीं चाहिए। जो आपको उचित है वो देते हैं, हमको लगता है कुछ उचित अलग होगा लेकिन गुरु जी को पता है कि इसके लिए क्या अच्छा है। एक सन्यासी ने प्रभुपाद को पूछा, अरे प्रभुपाद जी मैं सन्यास लिया तो कारण मुझे वृंदावन में बैठ के भजन करने की इच्छा थी, आपने मुझे तो ब्रिक्स गिनने में लगा दिया कंस्ट्रक्शन के अंदर। और दूसरा आदमी को बोला कि जाओ भ्रमण करो और प्रचार करो सन्यासी को। तो एक ही गुरु दो सन्यासियों को अलग अलग आदर्श दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग आत्माएं हैं, जो आत्मा के लिए जरूरत है वो दे रहे हैं। और आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि जो भी मुझे दे रहे हैं वो मेरी आत्मा के लिए अच्छा है, इसलिए बुद्धि का ज्यादा विचार न कर तर्क न करते हुए उसको पालन करना है। मैंने पहले ही बताया था गुरु जी की आज्ञा का पालन करने में ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तर्क वर्क वहां काम नहीं करता है कुछ। आध्यात्मिक जीवन तर्क के परे है, बियॉन्ड योर स्पेकुलेशन एंड बियॉन्ड योर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी लोग कल आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, जो भी लोग कल दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए बहुत परम भाग्य का दिन है कल का, परम भाग्य का दिन। बहुत दुर्लभ, बहुत रेयर है वो। कई जन्म के प्रयास करने के पश्चात बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्तिन्ते, बहुत जन्मों के प्रयास के बाद जब ज्ञान होता है तो पता चलता है कि अरे ये रास्ता है वो। सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा बहुत रेयर सोल होता है वो, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है, मतलब अति दुर्लभ है। तो वो अति दुर्लभ घटना कल होने जा रही है। अभी मैंने देखा कि हमारे गुरुदेव भी उधर शिकागो में दीक्षा दे रहे हैं इस वक्त, राइट नाउ। तो देखो कितना कष्ट कर उठाते हैं ये सब गुरुजन, जगह जगह जाते हैं, परदेश में कहाँ कहाँ जाते हैं, लोगों को उद्धार करने के लिए इतना बड़ा बोझा उठाते हैं, खुद के लिए कष्ट प्राप्त करने के लिए। किसको इंटरेस्ट है बताओ आप दूसरों का कष्ट उठाने के लिए? हु केयर्स? आज के ज़माने में कौन किसकी परवाह करता है? माँ बाप एक हैं जो अपना स्वार्थ छोड़कर बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, और बाद में फिर वो भी नहीं कर सकते हैं वो कुछ समय के बाद में। लेकिन माँ बाप कुछ हद तक गुरुजी का जैसा कार्य करते हैं, मतलब पर हित का सोचते हैं, पर दुख का बारे में सोचते हैं। वही माँ बाप का एक ऐसा उदाहरण जो है गुरु से मिलता जुलता है। लेकिन उनको छोड़ के दुनिया में कौन है ऐसा जो दूसरे की परवाह करता है? क्या जरूरत पड़ी है? अपना ही ज़्यादा है, दूसरा का कौन करेगा? हु विल केयर फॉर अदर्स? लेकिन जो खुद का कुछ भी ना सोचते हुए केवल बद्ध जीवों को कैसे मुक्त किया जाए, इस करुणा के साथ में लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, बोझा उठाते जा रहे हैं, व्हील चेयर में बैठे हैं, ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, इतना सारा कष्ट भोग रहे हैं, फिर भी जीवों का उद्धार करने के लिए दे रहे हैं और ले रहे हैं दीक्षा, शिष्यों को स्वीकार करते हैं। कितना सोचना चाहिए हमको उसके बारे में, ये व्यक्ति को क्या पड़ी है हमारी, इतनी इतने हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, और उनके वो भगवान के करुणा के प्रतिनिधि हैं। भगवान अनंत करुणा के सागर हैं, उनके करुणा के प्रतिनिधि हैं वो करुणा हमको देने के लिए आए हैं, और करुणा देने के लिए बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। अगर करुणा आपको किसी को देनी है भगवान की, बदले में बहुत कष्ट स्वीकार करना पड़ता है, और वो उनको मंजूर है। अगर इनकी सागर जैसी करुणा किसी जीव तक पहुँचानी है तो जो कष्ट मुझे सहना पड़ेगा मैं रेडी हूँ उसके लिए, ये गुरु की मनोधारणा है। तो हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, कृतज्ञता। वी ओनली कैन बी ग्रेटफुल एट आवर बेस्ट, और कुछ ज़्यादा चमत्कार हम लोग नहीं कर सकते। अगर हम ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं गुरु जी के प्रति, और उस कृतज्ञता की भावना के आधार पर उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो ये हमारा जीवन धन्य है। हरे कृष्णा। कभी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप ही शुरू कीजिए, फिर वो शुरू हो जाएंगे।
इतने गंभीर विषय को बहुत ही सुलभ तरीके से सभी के हृदय में पहुंचाने के लिए गुरु जी ने बहुत प्रयास किया है, और हमें कुछ ऐसे अच्छे मार्गदर्शन दिए हैं। तो प्रभु जी, मैं आपके समक्ष में एक छोटा प्रश्न रखना चाहता हूँ। कई लोग जैसे कुछ समय तक हमारे सत्संग में जुड़े हुए हैं, और अभी तक उनका मन में ये विचार ठीक से नहीं बैठ रहा है, गुरु की आवश्यकता सच में है या नहीं है। और कई लोगों को देख रहे हैं कि हाँ गुरु ले रहे हैं, हो सकता है ये उनका अपना मंतव्य है, उनको जाना दो, हम अपनी तरफ से देखेंगे किस तरह से क्या करना है। मगर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हर एक के जीवन में हर एक को गुरु को चुनना, चयन करना ये अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ पे चॉइस की बात नहीं है, ये नेसेसिटी है। तो इस बात को पूरी तरह से ध्रुवीकरण करके किस तरह से कोई भी व्यक्ति इसे समझ सकता है कि उसके जीवन में चॉइस नहीं है, ये नेसेसिटी है।
गुरु की प्रश्न उनका दोहराता हूँ कि गुरु की प्राप्ति ये चॉइस की बात नहीं है, ये आवश्यकता है, नेसेसिटी है, मस्ट है ये। तो फिर लोगों को समझता नहीं है क्या करें उसके लिए, ऐसा प्रश्न है ना आपका। उसका कारण ये है कि हम लोग अभी तक वो जो भौतिक दुनिया के भोग में फंसे हुए हैं, हमारा सब इंद्रिया जो है वो भौतिक दुनिया में भोग प्राप्त करने में अभी तक लगा हुआ है। हाँ, कंप्लीटली लॉस्ट इन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड अटैच टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब इंद्रिय भोग के लिए बहुत आसक्त रूप में बैठे हम लोग यहाँ पर। और ये इंद्रिय भोग के आसक्ति से मुक्त होने का मार्ग है, तो ये छूटता नहीं है इसलिए वो मिलता नहीं है, दोनों चीज नहीं मिलेगा आपको। दो नाव पर पैर रखकर आप बोट में नहीं चल सकते, नदी में जा रहे हो तो एक पांव एक बोट में है, दूसरा पांव दूसरा बोट में है, तो क्या होगा, आपका डूबना निश्चित है, दोनों में नहीं चल सकते। जब ये छूटेगा तो ये मिलेगा, जब ये फंसा रहेगा तो ये नहीं मिलेगा। आपको एक चॉइस करना पड़ेगा और ज्ञान के आधार पर करना पड़ेगा। जैसे अभी ये गल्फ कंट्री है, फिर यो यूरोप है, फिर अमेरिका है, यहाँ पर बहुत सारे भोग की व्यवस्था है, बहुत सारा एंजॉयमेंट है, हाईटेक सिचुएशन है, इंद्रियों के लिए बहुत यहाँ पर अट्रैक्शन है हमारे लिए, लॉट ऑफ अट्रैक्शन फॉर आवर सेंसेस टू एंजॉय, जो हमको बहुत लुभाता है मन को। लेकिन फिर भी ऐश्वर्य प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य के साथ में पता होना चाहिए कि ऐश्वर्य जो प्राप्त कर रहे हैं वो एक दिन हमको छोड़ के जाएगा निश्चित रूप से, ये पता होना चाहिए हमको। उसी आधार पर हमको ये काम करना चाहिए कि जब तक ये है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, खाना पीना मिल रहा है, मेंटेन लाइफ अच्छी तरह से हो रहा है, तब तक गुरु जी की प्राप्ति करके जीवन को शरणागति बना लो। तो एंड समय तक वेट मत करो, प्राण प्रणय प्रयाण समय कफवात पित्तौ कंठावरोधन विधौ शरणम प्रकुटस्थे। तब क्या करेंगे हम, जब प्राण छूटेंगे तब कुछ नहीं कर पाएंगे, समय बीत गया होगा उस समय। अभी जब तक सब ठीक है ना, बुद्धि भी सही जगह पर है, सब कुछ स्थिर स्थावर है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, तब तक आप ये कर लो। ज्ञान के आधार पर क्यों ना हो, बुद्धि के आधार पर क्यों करना हो, स्वीकार कर लो उसको एक बार। एक बार गाड़ी पकड़ लो आप, चाहे लटकते हो पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ो गाड़ी एक बार, फिर आप अंदर जा सकते हो थोड़ी देर के बाद। लेकिन गाड़ी पकड़ो, शक्ति है तब तक पकड़ लो, बाद में वो पकड़ने की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी, इट विल बी फिनिश्ड। और कितना भी रोएंगे आप, कितना पश्चाताप करेंगे, अरे मैंने जीवन व्यर्थ गंवाया, रो के कुछ फायदा नहीं होगा उस समय, क्योंकि समय बीत गया होगा। तो हाउ टू मेक इट मेक आवर सेल्फ अंडरस्टैंड दिस, ओनली बाय नॉलेज, कि यहाँ पर जो भी है वो सब टेम्पररी है, क्षण भंगुर है, अशाश्वत है, समाप्त होने वाला है। कितना भी आप चिपकोगे उसके ऊपर जाके, आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन। कितना भी आप करो, आप चाहे प्रधानमंत्री हो या तो मिलिट्री के चीफ हो या कुछ भी आपकी बड़ी पोजीशन हो, सबको छोड़ना पड़ेगा एक दिन। बुद्धिमान व्यक्ति वो है, वो आपको छोड़ने के पहले मैं उसको छोड़ दूंगा, तो सबसे बेस्ट है ना। वाई टू वेट एम्बेरसमेंट कि आप मुझे छोड़ जाओगे, तब मैं रोता बैठूंगा। मुझे पता है कि आप छोड़ने वाले हो, पहले से मन से मैं डिटैच हो जाऊंगा, ताकि जब आप छोड़ के जाओगे तब मुझे दुख नहीं होगा। ये पैसे के बारे में कह रहा हूँ, ऐश्वर्य के बारे में कह रहा हूँ। हे ऐश्वर्य, आप मुझे एक दिन छोड़ने वाले हो, ये पता करके मैं आपसे अभी से आसक्ति छोड़ देता हूँ, ताकि जब एक्चुअली आप छोड़ेंगे तब मैं रोऊंगा नहीं बैठ के। मुझे पता होगा कि छोड़ने वाला था, अभी क्या रोना है उसके अंदर, वो पहले से पता था मुझे कि छूटने वाला है। ये जानकारी आपको आज होगी ना, तो ये आज आप इफेक्टिवली परिणामकारक रीति से गुरु जी के पास भाग सकते हो। ये तो ऊपर पड़े रहो यहाँ पर, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा, हाँ तकलीफ, यहाँ पर तो माया की लाते बहुत पावरफुल होती है, वेरी पावरफुल किक्स माया गिव्स। अगर गधा बन के रहना है तो फिर किक्स खानी पड़ेगी, मनुष्य बन के रहना है तो ये जानते हुए कि ये किक लगने वाली है उसको दूर होना पड़ेगा। दूर होकर जहाँ जाना पड़ेगा जहाँ लड्डू मिलने वाले आपको, लात खाने के लिए मत जाना, लड्डू खाने के लिए जाना। यही बुद्धि है। बुद्धि किसके लिए दी है भगवान ने हमको? इसके लिए दी है, समझने के लिए कि लड्डू कहाँ है और लात कहाँ है। लेकिन हम जाते हैं उसी की तरफ लात खाने के लिए, अभी मिलेगा फिर लात खाते, फिर अभी मिलेगा फिर लात खाते। दिस इज अवर लाइफ, वेरी मिजरेबल लाइफ। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है गधों को। मैं जब गया था ना उधर गुजरात कैंप में गया था भूकंप में 2001 में, एक साल भर वहाँ रहा था मैं। तो रात को हम लोग तंबू में रहते थे, तंबू में, क्योंकि वो भूकंप होता ना भूकंप, तो रोड पे तंबू लगा के सोते थे हम लोग और दिन भर सेवा करते थे। तो रात को चलते रहता था, क्या चल रहा है बाहर देते तो क्या है, गधा और गधी, और क्या लात मारती है उसको, बाप रे, कांट इमेजिन। इतना हार्ड शी किक्स ऑन द फेस, इतना हार्ड कि देख के भी हमको दुख होता, अरे बाप रे कितना मुंह पे लात मारा उसने, फिर भी वो उसके पीछे 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 भागते रहते। क्या करने के लिए? केवल लात खाने के लिए। आप कितने भी बड़े चैंपियन हो कराटे के, तो ऐसे लात नहीं मार सकते हैं जैसी वो गधे को मारती है। दिस इज अ फैक्ट। तो क्या आंखों से देखा है मैंने, यू कैन नॉट इमेजिन द किक, इज सो पावरफुल ऑन द फेस, दोनों लात से मारती है वो, फिर भी उसके पीछे रात भर उसके पीछे घूमता है फॉर सम एंजॉयमेंट। तो ये देखेंगे तो हमको ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र में कहा है, हम भी देखते हैं और बताया भी जा रहा है कि दुनिया के आनंद को अनुभव करने का मतलब वो गधी का लात मुंह पे खाने के जैसा है। वो आपको अगर पता चला कि ऐसे है तो आप फिर बुद्धिमानी से दूर चले जाओ, नहीं चाहिए लात खा के आनंद को। 50 लात खा के 2 मिनट का आनंद के क्या करना है उसको, वापस 2 मिनट जाएगा वापस 50 लात खाना पड़ेगा नेक्स्ट मॉर्निंग को। ये नॉलेज ही बचा सकते हैं हमको, नहीं तो क्या है, ये भी पैसा भी अच्छा है, कनाडा भी अच्छा है, यहाँ से कनाडा चले जाओ, वहाँ सेटल हो जाओ, फिर वहाँ से ये करो, वहाँ से वो करो। फिर कितने लोगों को ड्रीम होते हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स आते हैं गल्फ में 2 साल के लिए, बाद में सोचते हैं कनाडा जाएंगे, वहाँ सेटल हो जाएंगे, वहाँ और अड़ी कंट्री में जाएंगे, वहाँ प्रगति करेंगे, वहाँ पर पैसा कमाएंगे। मरते समय सब कुछ रहता है लेकिन सब कुछ कुछ फायदा नहीं होता उसका। जब मौत का समय आता है ना, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपका कॉन्टैक्ट, आपके डॉक्टर्स, आपका किसी का भी कुछ फायदा नहीं होता है। मृत्यु आपको सबके बीच में आकर ले जाती है, ये फैक्ट है लाइफ का। और ये आपको पता है तो ही आप भगवान की तरफ मुड़ सकते हो। जिसको ये अनुभव हो चुका है अंदर से कि ऐसा ही है। अभी आपके कंट्री में क्या कंडीशन है, जब आप आए थे तो क्या कंडीशन था, आज लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, आज लोगों को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, आज लोगों को भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या करना है, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। एक दिन तेल था यहाँ पर तो यहाँ प्रगति हो रही थी, आज तेल समाप्त हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये सब दुनिया का वास्तविक स्वरूप है, ये खाली ये कंट्री का नहीं है, सब दुनिया की कंडीशन यही है। सब कुछ समाप्त होने वाला है, सब दिखता है आपको टेम्पररी है, जो भी चकाचौंध दिख रहा है ना वो कुछ समय के लिए है, सब समाप्त होने वाला है। बी प्रिपेयर्ड। मैं लोगों को ये बताता हूँ कि आपको डूबने तक इंतजार नहीं करना है, ये जानना है कि डूबने वाले ही हम लोग, पहले निकलो वहां से। कहते हैं कि जब जहाज डूबता है ना तो सबसे पहले चूहे उससे बाहर निकलते हैं, वो दे दो कि अभी पानी आ रहा है, दे डोंट वेट, दे क्विकली लीव द बोट इमीडिएटली। वो बोट में ब्रेड है, अरे बोट में केक है, बोट में ये खाना रखा है, अरे खा के जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, पानी आए तो पूरा भाग जाते हो। वैसे ही आने वाले संकट को देखते हुए हमको तैयार रहना चाहिए कि बिफोर द किक ऑन द फेस आई शुड लीव। इसको बुद्धि कहते हैं, नहीं तो बुद्धि का मतलब क्या है? तो ज्ञान, इसलिए पहले वो प्रचार करते हैं ना, वो किताबें बांटते हैं, कथा सुनाते हैं, क्यों? ये समझाने के लिए कि ये सब टेम्पररी है। इसलिए बहुत ज्यादा ऐश्वर्य के भोग में आसक्ति मत रखो, क्योंकि वो आपको धगा देगा एक दिन निश्चित रूप से। ज्यादा दिल लगाएंगे दुनिया में तो आपको दुनिया लात ही मारेगी मुंह पे एक दिन। तो वो बेस्ट कराटे चैंपियन कौन है? वो सामने वाले के किक के रेंज में नहीं आता है, वो वैसे किक ऐसे घूमते हैं उसके पीछे रहता है, वो इतनी रेंज है किक की उसके आगे रहता है वो। दैट इज एक्सपर्ट कराटे चैंपियन है ना, इज एक्सपर्ट इन अवॉइडिंग एंड कीपिंग हिमसेल्फ अवे। वो जो किक की रेंज है उससे वो दूर रखता है अपने आप, और किक का प्रभाव, किक का आघात अपने ऊपर होने देता नहीं है। वैसा हमको होना चाहिए। नॉलेज एक ही बात है उसके लिए, और नॉलेज के बिना कैसे मालूम कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, और दिमाग से गुरु को चुनना है तो क्या करना है? इसलिए अच्छे भक्त का संग होना चाहिए, जो ऑलरेडी इस रास्ते पर है, जिन्हें ऑलरेडी अभी कन्फ्यूजन में नहीं है, वो ऑलरेडी जा चुका है रास्ते में आगे, है ना। अभी मेडिकल स्टूडेंट को किसको मिलना चाहिए? डॉक्टर को मिलना चाहिए ना, जो पढ़ा लिखा है, वो अध्यापक है, ऑलरेडी MD कर चुका है, उसी के साथ मिलना ना उसको। साथ वाले को मिलेगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा ना, और वो उसको मिलना किसको है? जो ऑलरेडी इस रास्ते में, उस तरह से जो ऑलरेडी दीक्षा दे चुका है, इस रास्ते में ऑलरेडी चल रहा है, उसको अनुभव भी मिल चुके हैं, उनका संग पकड़ कर रखना चाहिए। जब दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, ऐसे कन्फ्यूजन में उसका सलाह लेना चाहिए। वेन वी गो टू डॉक्टर, वेन वी फॉल सिक, एंड डू वी आर्ग्यू देयर विद डॉक्टर कि एंटीबायोटिक क्यों दिया आपने, ये क्यों नहीं दिया, वो अच्छा था इससे? वी डोंट आर्ग्यू ना, वी गो विथ फुल फेथ टू डॉक्टर। बट वी गो टू डॉक्टर, वी डोंट गो टू अवर सिस्टर कि आई एम सिक, मेरे को दवा दो, है ना। उसी तरह से जब आपका दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, आप उस व्यक्ति के पास जाओ जो ऑलरेडी फिक्स्ड है उस रास्ते में, उसकी सलाह लो और उस पर चलो, उस पर बहस मत करो, फॉलो हिम। तो हमारे सिस्टम में कैसा होता है ना, एक होता है मेंटर या काउंसलर जो हमको गाइड करता है, तैयारी कराता है और गुरु तक पहुंचाता है। इज ऑल्सो वन ऑफ द गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु कह सकते हैं उसको, शिक्षा गुरु कह सकते हैं। तो हर समय एक शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु होना चाहिए हमारे जीवन में, जो कॉन्स्टेंटली हमको सहायता कर रहा है, साथ दे रहा है हमारा, लाइक अ को पैसेंजर, बट हमारे आगे है, वो उसी रास्ते में चल रहा है लेकिन हमारे आगे है, उसका सहारा लेके हम चलते रहते हैं। व्हेन देयर इज कन्फ्यूजन ऑफ दिमाग एंड दिल, दैट टाइम वी टेक शेल्टर एंड ऑफ द शिक्षा गुरु हु इज वर्किंग विद अस, अहेड ऑफ अस। और क्या प्रश्न है? शास्त्र, शास्त्र ये गुरु जी की आज्ञा का ही प्रमाण है, और वो शास्त्र में जो लिखा है वो समझाने के लिए शिक्षा गुरु या गुरु हैं। और जो आगे वाले थे हमारे, क्या कहते हैं उसको, साधु, जो पहले साधु रह चुके हैं, नारद मुनि, व्यासदेव, सुखदेव जी, वो भी समझा रहे हैं हमको वही चीज़। तो तीनों मिलते जुलते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र, तो वो एक दूसरे को सहायता करके हमको रास्ते में चलाते हैं। हाँ, यस मदन जी।
तो
प्रश्न क्या आपका?
प्रश्न वही, मतलब वो चंचलता, ये जिद्दीपन है बच्चों का, वो कंट्रोल कैसे रखें? मतलब
आज का विषय हमारा गुरु का है।
हाँ, मतलब फिर उनको, मतलब कैसे गुरु, ऐसे ऐसे गुरु के इसमें,
सबसे पहले माता पिताओं को गुरु की शरण लेना चाहिए। जब हम सही रास्ते पर रहेंगे तो हमारे बच्चे सही रास्ते पर रहेंगे। अभी पेड़ भी टेढ़ा है, वो फल भी टेढ़ा आ रहा है, तो अगर फल टेढ़ा है तो सीधा करना है तो पेड़ को सीधा होना पड़ेगा, है कि नहीं? सॉरी, हाँ, मेरा, मैं एकदम, मतलब क्या ना, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मैं यहाँ पर गुड़ी गुड़ी बात करने के लिए दूर नहीं आया हूँ। जो आपको ज़रूरी है वो समझाने के लिए आया हूँ, अगर मुझे लगता है कि वो सही है। तो सबसे बड़ा तरीका, अगर हमको बच्चों को सुधारना है तो खुद सुधरना चाहिए पहले, क्योंकि तो बच्चे हमारा रिफ्लेक्शन है। यू मे नॉट एक्सेप्ट, अरे ये गुण कहाँ से आ गए इसके अंदर, हमारे पे तो ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है, जो आपके अंदर है वही उसके अंदर आया हुआ है। मराठी में एक कहावत है, हाँ, आड़ात नहीं तर पुरात कुटना येणार पोहऱ्यात, मतलब जो कुआं होता ना, कुआं, उसके अंदर हम डालते हैं बाल्टी, तो बाल्टी में पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, अरे कुएं में पानी होगा तो बाल्टी में आएगा ना, और अगर बाल्टी में आ रहा है मतलब कुएं में है, और जो बाल्टी में है वो वही कुएं में था, इज इट नॉट ट्रू? वो अगर कुएं बाल्टी में शरबत है हम डाला तो शरबत निकला, मतलब क्या कुएं में शरबत है, और बाल्टी में जो आया वो कंटेमिनेटेड रोगट पानी है, मतलब रोग देने वाला पानी है, मतलब कुएं में भी वो रोग देने वाला पानी था। बंद हो गया आवाज, क्या आ रहा है ना? तो कुएं में से जो होता है वही बाल्टी में आता है, इसलिए बालकों का जो भी दोष है या गुण है उसके जिम्मेदार हम ही हैं। अगर बालकों में बहुत सद्गुण है तो भी उसके जिम्मेदार हमें, बालकों में अगर कुछ दुर्गुण है उसके जिम्मेदार भी हमें। फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि वी आर रिस्पॉन्सिबल। इसलिए जैसे ही आपका जीवन बदलने लगेगा ना, यू विल सी द चेंज इन योर चिल्ड्रंस लाइव्स 100%। इफ यू चेंज द चिल्ड्रन विल चेंज, इफ यू चेंज फॉर गुड द चिल्ड्रन विल चेंज फॉर गुड। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। एनी बींग पेरेंट उसका मतलब है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट ही एंड शी इज डायरेक्टली। आई कैन ब्लेम सोसाइटी, स्कूल चिल्ड्रेन, सोसाइटी चिल्ड्रेन, दिस एटमोसफियर, गल्फ एटमोसफियर, इंडियन एटमोसफियर, आई कैन ब्लेम एनीथिंग, आई डोंट ओनली ब्लेम माई सेल्फ। तो अगर बच्चों को नियंत्रण में लाना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। ये मेरे बारे में भी सत्य है और आपके बारे में भी सत्य है, ऐसा नहीं कि मेरे में लागू नहीं कर आपको लागू है। इट इज ट्रू फॉर एवरीबडी। इफ यू आर चिल्ड्रन आर एक्स वाई जेड यू आर रिस्पॉन्सिबल। वेरी सिंपल। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? यस। इनका प्रश्न है कि जब हम गुरु को मिले ही नहीं है तो कैसे फॉलो करें उनको, इज दैट राइट? जो उनको मिले हैं उनको मिलो, है ना? अभी अभी समझो मुझे, अभी पढ़न में question. So we develop hope and faith by seeing those who are following that and are happy and successful in life. हम लोग उन लोगों को मिलते हैं जो उनको मिल चुके हैं और उनके बारे में उनके मुंह से सुनते हैं तो हमारा विश्वास होता है ना। जैसे कि आपको अमेरिका जाना है तो आप पहले उन लोगों से मिलो जो अमेरिका जा चुके हैं और आ चुके हैं वापस, उनसे गाइडेंस ले लो, तो फिर आप एक दिन अमेरिका पहुंच जाओगे। बिकॉज दोज हु हैव गॉन देयर एंड कम बैक दे विल गाइड यू हाउ टू गो देयर। जैसे मैं इंडिया से निकला यहाँ से तो मैं पूछता हूँ ना क्या होगा, तो बोलेंगे कि आंखों का टेस्ट पहले करते हैं उधर, क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्कैनिंग करते हैं, और ये पासपोर्ट पूछते हैं, फिर वीज़ा पूछते हैं, फिर पर्पज़ पूछते हैं। तो सारा मैंने क्वेश्चन आंसर का तैयारी करके आया ना मैं इधर, स्मूथली स्मार्ट गेट से बाहर आ गया मैं। Why I came out of smart gate? Because I was fully guided before, fully prepared, no confusion. Because I have met the person who has gone through the procedure before, so I have no confusion. ऐसा है वो। अगर आप directly नहीं मिले होंगे, आप उनसे मिलो जो उनको मिले हैं, फिर आपको बराबर guide करेंगे वो। Okay? हरी बोल। Yes.
जब हम नहीं दिया जाता है कि हम एकांत में थोड़ी देर बैठ के अपना चिंटिंग पूरा कर ले, क्योंकि सुबह चार चार साढ़े चार से काम शुरू हो जाता है।
कहाँ पर?
बस हमारे है हमारे सेल मेंबर में, तो वो लोग उठते तो बहुत जल्दी है, पर बेचारे यहाँ इतनी साधना करते हैं, वहां जाके सब धोखे आ जाते हैं।
वो वहां जाते तो सब धोखे आ जाते हैं।
बच्चे ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, तो वहां उनके लिए मतलब उनको बोला कि हाँ अभी से ये सब खुद तो करते हो, बच्चों को भी बिगाड़ते हो, मतलब उस सच सिचुएशन में ये अपने को कैसे संभाले, किस तरह से अपने को दृढ़ करें, क्योंकि भोजन में भी अगर ऑनियन गार्लिक पड़ जाता है, बच्चे बेमन से खाते हैं, खुशी से नहीं खाते, वो अंदर जलते जलते खाते, क्योंकि बड़े ने बोला है, अभी
जेठानी
हो गए, सास हो गए, उन्होंने बोला।
तो प्रश्न क्या आपका?
तो किस तरह से अपने को संभाले?
इसमें एक ही उत्तर है, वन वर्ड आंसर, वो है निश्चय। नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। और निश्चय जो है वो केवल मनुष्य में होता है। ह्यूमन बीइंग माइनस निश्चय इज इक्वल टू एनिमल और लोअर स्पीशीज। एनिमल भी क्यों बोलते हैं, एनी स्पीशीज। तो इसका उत्तर एक ही है, निश्चय। ये मत समझना कि हमारे जीवन में आपका ऐसा प्रसंग नहीं आया है, या जितने जितने भक्त बने हुए हैं सबके घर में ये प्रसंग आया है, सबके घर में विरोध होता है, सबके घर में समस्या होती है, सबके घर में स्थितियां बदलने से सब परेशानी उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम जिद से आगे जाते हैं तो धीरे धीरे ये सब जो ऑपोजिशंस है वो ढीले पड़ जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। जैसे पहले पहले हम लोग जो जाते थे तो सेम थिंग होती थी हमारे साथ में, अरे ऐसा कैसे, क्या होगा, इतना बड़ी क्या बात है, चाय बाफी नहीं पीते आप लोग, क्या दारू तो मैं पिता नहीं रहा हूँ, चाय पिला रहा हूँ। यही सब सुनना पड़ता है, यही सब, इतना क्या बड़ी बात है, हम थोड़े धमाकों खिला रहे आपको, चाय पिला रहे, उसमें क्या बड़ी बात है, सब बताते रहते। बट अभी हम आ रहे हैं ये सुन के ही किचन साफ हो जाता है। वो आ रहा है अभी, तो अभी नथिंग, तो खाएगा ही नहीं, और हमको तो एकदम क्लियर है हम आएंगे ही नहीं। सिंपल बात है। सो कैसे ना, कालांतर में जब आपने निश्चय को बना के रखा है ना, तो कालांतर में वो भी चेंज हो जाते हैं। आप अगर सुदृढ़ हैं, आप अगर निश्चय करके सुदृढ़ बने हुए हैं ना, वो सरेंडर हो जाते हैं। फर्स्ट स्थिति क्या है, क्रिटिसिज्म, आपका क्रिटिसाइज करेंगे। सेकेंड स्थिति है ब्लेम, आपको ब्लेम कर, देखो आप अभी फेल हो गए ना, देखो इसके वजह से फेल हो गए, ऐसे चलता रहता है वो। फर्स्ट अपोजिशन, क्रिटिसिज्म, ब्लेम, और देन वर्शिप। वही लोग जो हम हमारी निंदा करते थे, हमारे ताने मारते थे, ब्लेम करते थे, बाय द वे सॉरी टू से, अभी वो पैर छूते हैं और पीछे पीछे आते हैं, तो सारी कथा सुनते हैं और दोनों को बताते हैं कि मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है। जो लोग ब्लेम कर रहे थे पहले, वही अभी आपके साथ में रिश्ता होना को गौरव समझते हैं। ये इतना बड़ा जो अंतर है ना, उसके लिए बहुत अपने को निश्चय से जाना पड़ता है। तो आप जब इंडिया जाओगे ना, पहले से बता के रखो, मैं आऊंगी, आऊंगा एक दो तीन चार कंडीशन पे आऊंगा, नहीं तो आऊंगा ही नहीं, ये ध्यान रखना, मैं नहीं करने वाली, मंजूर है तो आती हूँ, नहीं तो मैं वही जहाँ पर हूँ वहाँ पर अच्छी हूँ। इतना बताने की हमको हिम्मत चाहिए, लेकिन जेन्युइनली चाहिए, अपराध करने के लिए नहीं चाहिए। क्या कहते हैं उस गर्व से और अहंकार से नहीं बोलना है आपको, लेकिन नम्रता से बोलना है, देखो ये अभी ऐसे ही रहेगा, हम चाय नहीं पियेंगे, अनियन गार्लिक नहीं खाएंगे, मंजूर है तो आएंगे, नहीं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब भाई मैं तो सबसे मेरे घर में छोटा हूँ, मेरे घर में सात है मेरे ऊपर, और मैंने जब भी शुरू किया तो सब तो सीनियर है मेरे ऊपर, तो सब तो हावी होने वाले हैं मेरे ऊपर ना, मेरे ऊपर सब लोग प्रभाव डालने वाले हैं। लेकिन पहली बार मैं हार गया, अगली बार पूरा सशस्त्र होके गया। अभी मुझे याद है, एक दिवाली में जब गया था भाऊ भैया दूज के लिए, सब भाई बहन ने मेरे ऊपर ऐसा हमला बोल दिया कि मैं परास्त हो गया। अगली दिवाली में मैं सबको परास्त कर दिया। तभी मेरे फिर रास्ते में कोई नहीं आया बाद में। अभी भी छोटा था, कोई बात नहीं, लेकिन निश्चय ऐसी वस्तु होती है ना, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। वंस यू आर डिटरमाइंड, नोबडी कैन टच यू। हम लोग थोड़ा कमजोर रहते हैं, इसलिए ढीले ढले पे हार जाते हैं। निश्चय सबसे बड़ी ताकत है, याद रखना। निश्चय से ही भगवान को मिलेंगे आप एक दिन। निश्चय नहीं करोगे कैसे भगवान से मिलेंगे? कोई चीप वस्तु नहीं वो। इसलिए आप अपना निश्चय बताना लोगों को कि बराबर आपके लाइन में आएंगे। वो कैसा है ना, हमारे मराठी में कहावत है, मऊ लागला तो अपन कोपरा नहीं खंडतो। मतलब अगर कोई नरम जमीन मिला ना तो लोग हाथ से नहीं खोदते, इधर से ही खोदते हैं इसे। आसान है ना वो, लेकिन आप उतना कमजोर मत बनो, फिर वो आपका एडवांटेज नहीं लेंगे। ऐसा है, अरे अपनी भाषा इतनी समृद्ध है बाबा, एवरीथिंग इज देयर, यू नो, वंडरफुल थिंग्स आर देयर, वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट। चल वी एंड हियर। जय जय श्री राधे। यहाँ वहाँ करेंगे ना, यहाँ वहाँ सब जगह घूम के ना, अल्टीमेटली उनको ही पुकारना है।